लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे उन नए शहीदों के लिए याचना करते हैं जो विश्व के विभिन्न भूभागों में सुसमाचार के खातिर अपनी जान जोखिम में डालते हैं। हमारी प्रार्थना है कि वे अपने साहस और मिशनरी उत्साह से कलीसिया को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है बुधवारे आम दर्शन समारोह के अवसर पर पोप फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। बुधवारे आम दर्शन समारोह के अवसर पर 27 मार्च को पोप फ्रांसिस ने वैटिकन के संत पॉल सभागार में एकत्रित सभी विश्वासियों एवं तीर्थयात्रियों के सामने सद्गुणों पर अपनी धर्म शिक्षा माला जारी रखते हुए धैर्य के सद्गुण पर चिंतन किया। संत पापा ने सभी का अभिवादन करते हुए कहा, प्यारे भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात।
डोमेनिका स्कोर्सा अबियामो अस्कोल्टातो इल रकोंटो देला पासियोने देल सिग्नोरे।
पिछले रविवार को हमने प्रभु के दुख भोग का वृत्तांत सुना। यीशु सह रहे कष्टों का जवाब एक सद्गुण से देते हैं, धैर्य के सद्गुण से। हालांकि इसे पारंपरिक नहीं माना जाता है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह कष्ट सहने वाले व्यक्ति के सहनशीलता से संबंधित है। यह कोई संयोग नहीं है कि धैर्य का मूल दुख भोग के समान ही है। वास्तव में दुख भोग में ही ख्रिस्त का धैर्य उभरता है। उदाहरण के लिए, वे विनम्रता और साम्यता के साथ गिरफ्तार किया जाना, पीटा जाना और अन्यायपूर्ण तरीके से निंदा किया जाना स्वीकार करते हैं। वे पिलातुस के सामने दोषारोपण नहीं करते। सैनिकों द्वारा अपमानित होना, धोखा जाना और खोड़े लगाए जाना सहन करते हैं।
Il peso della croce.
क्रूस का भारी बोझ उठाते वे उन लोगों को क्षमा कर देते हैं जिन्होंने उन्हें लकड़ी पर कीलों से ठोका और क्रूस पर टांग दिया। वे चिढ़ाए जाने का जवाब नहीं देते बल्कि दया करते हैं। संत पापा ने कहा,
Questa è la pazienza di Gesù.
यह यीशु का धैर्य है। ये सारी चीजें बतलाती हैं कि यीशु के धैर्य में पीड़ा के प्रति कठोर प्रतिरोध शामिल नहीं है, बल्कि यह एक बड़े प्रेम का फल है। प्रेरित संत पॉलुस तथा कथित भ्रातृ प्रेम के गुणगान में प्रेम और धैर्य को बारीकी से जोड़ते हैं। वास्तव में प्रेम का गुणगान करते समय वे एक शब्द का प्रयोग करते हैं जिसका अनुवाद उदार या धैर्यवान होता है। प्रेम उदार है, वह धैर्यशील है और एक आश्चर्यजनक अवधारणा को व्यक्त करता है जो अक्सर बाइबल में दिखाई देती है। ईश्वर हमारी व्यवहार के सामने खुद को देर से क्रोध करने वाले के रूप में दिखाते हैं। मनुष्य की बुराई और पाप के प्रति अपनी घृणा व्यक्त करने के बजाय वे अपनी महानता प्रकट करते हैं। हर बार अनंत धैर्य के साथ फिर से शुरू करने के लिए तैयार रहते हैं। संत पॉलुस के लिए यह ईश्वर के प्रेम का पहला सद्गुण है जो पापों को क्षमा प्रदान करते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, यह हर महान प्रेम का पहला गुण है जो बुराई का जवाब अच्छाई से देना जानते हैं, जो क्रोध और निराशा में खुद को बंद नहीं कर लेते बल्कि धैर्य बनाए रखते और फिर शुरू करते हैं। इसलिए धैर्य की जड़ में प्रेम है, जैसा कि संत अगस्टीन कहते हैं, जो किसी की बुराई को सहन करने के लिए जितना अधिक मजबूत होता है उसमें ईश्वर का प्रेम उतना ही अधिक होता है। संत पापा ने कहा कि कोई यह कह सकता है कि एक धैर्यशील ख्रिस्त से मिलने से बढ़कर यीशु के प्रेम का कोई दूसरा साक्ष्य नहीं हो सकता। लेकिन आइए हम यह भी सोचें कि कितने माता पिता, कर्मचारी, डॉक्टर और नर्स और बीमार लोग जो हर दिन छिपकर पौत्र धैर्य से दुनिया को सुशोभित करते हैं। जैसा कि धर्म ग्रंथ में कहा गया है, धैर्य एक नायक की ताकत से बेहतर है। हालांकि संत पापा ने स्वीकार किया है कि ईमानदारी से देखा जाए तो हम में अक्सर धैर्य की कमी होती है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम कभी कभी अधीर हो जाते। हमें आगे बढ़ने के लिए आवश्यक विटामिन के रूप में इसकी आवश्यकता है, लेकिन हम सहज रूप से अधीर हो जाते हैं और बुराई का जवाब बुराई से दे जाते हैं। शांत रहना, स्वाभाविक प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखना, बुरी प्रतिक्रियाओं को रोकना, परिवार में, काम पर या ख्रिस्ती समुदाय में बहस और झगड़ों को शांत करना कठिन होता है। तुरंत बदले की भावना आती है और हम धीरज नहीं रख सकते। संत पापा ने कहा,
Ricordiamo però che la pazienza non è solo una necessità.
फिर भी आइए हम याद रखें कि धैर्य केवल एक आवश्यकता नहीं है, यह एक आह्वान है। यदि ख्रिस्त धैर्यवान है तो ख्रिस्तों को भी चाहिए कि वे धैर्यवान बने, और इसके लिए हमें व्यापक तौर पर आज की मानसिकता के विपरीत जाने की आवश्यकता है, जिसमें जल्दबाजी और सब कुछ तत्काल हावी है, जहां स्थितियों के परिपक्व होने की प्रतीक्षा के बजाय तुरंत बदलने की अपेक्षा की जाती है।
Non dimentichiamo che la fretta e l'impazienza sono nemiche della vita spirituale.
लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जल्दबाजी और अधीरता आध्यात्मिक जीवन के दुश्मन हैं, क्योंकि ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम करता है वह नहीं थकता, क्रोधित नहीं होता, अंतिम चेतावनी नहीं देता। ईश्वर धैर्यवान है, वे इंतजार करना जानते हैं। आइए हम उस दयालु पिता की कहानी के बारे सोचें, जो घर छोड़ चुके बेटे के लौटने की प्रतीक्षा करता है, धैर्यपूर्वक दर्द सहता और जैसे ही उसे वापस लौटते हुए देखता है उसे गले लगाने के लिए अधीर हो जाता। आइए हम गेहूं और जंगली घास के दृश्य के बारे सोचें। ईश्वर समय से पहले बुराई को खत्म करने की जल्दबाजी नहीं करते ताकि कुछ भी ना हो जाए। इस प्रकार धैर्य सब कुछ बचा लेता है। संत पापा ने कहा, भाइयों एवं बहनों, आप धैर्य से कैसे बढ़ सकते हैं? जैसा कि संत पौलुस सिखाते हैं, यह पवित्र आत्मा का फल है, इसलिए इसे ईश्वर के आत्मा से मांगा जाना चाहिए। वे हमें धैर्य की विनम्र शक्ति प्रदान करते हैं। धैर्य एक विनम्र शक्ति है, क्योंकि सिर्फ अच्छा बने रहना ख्रिस्त सद्गुण की विशेषता नहीं है, बल्कि यह भी जानना है कि बुराई को कैसे सहन किया जाए। विशेषकर इन दिनों हमारे लिए क्रूसित येसु के धैर्य को आत्मसात करने के लिए उन पर चिंतन करना है। एक अच्छा अभ्यास यह भी है, सबसे अधिक परेशान करने वाले लोगों को प्रभु के पास लाना है और उनके लिए दया का व्यवहार पाने की कृपा मांगनी है। संत पापा ने कहा, यह आसान नहीं है। आइए हम चिंतन करें कि क्या हम ऐसा करते हैं? क्या हम पीड़ा देने वालों को धैर्य पूर्वक सहन करते हैं? इसकी शुरुआत उन्हें दया की दृष्टि से, ईश्वर के नजरिए से देखने से होती है, यह जानने से कि उनके चेहरों को उनके दोषों से अलग कैसे किया जाए। हमें लोगों को उनकी गलतियों के साथ सूचीबद्ध करने की आदत है। संत पापा ने कहा, ये अच्छा नहीं है। हम लोगों को उनके चेहरों, उनके दिलों की वजह से तलाशें, उनकी गलतियों की वजह से नहीं। अंत में संत पापा ने कहा कि धैर्य विकसित करने के लिए एक सद्गुण जो जीवन को सांस देता है, अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाना अच्छा है। उदाहरण के लिए, संसार को अपनी परेशानियों तक सीमित नहीं रखकर प्रभु येसु का अनुसरण हमें ऐसा करने के लिए आमंत्रित करता है। क्या आप दूसरों की अत्यंत दर्दनाक परेशानियों को याद रख सकते हैं ताकि आप अपने छोटे बच्चों को अधिक आसानी से सहन कर सकें? यह याद रखते हुए कि ईश्वर के लिए जो कुछ भी कष्ट सहा जाता है, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, पुरस्कार के बिना पार नहीं होता। और अभी भी जब मैं अपनी परीक्षा के चंगुल में, जैसा कि योग सिखलाते हैं, ईश्वर की नवीनता के प्रति आशा के साथ खुद को खोलना, इस दृढ़ विश्वास के साथ कि वे हमारी उम्मीदों को निराश नहीं करेंगे। धैर्य का अर्थ है बुराइयों को सहन करने जानना। तत्पश्चात धैर्य का साक्षात उदाहरण देते हुए संत पापा ने कहा,
E qui oggi in questa udienza ci sono due persone, due papà. Sono i primi.
आज यहाँ इस आम दर्शन समारोह में दो व्यक्ति, दो पिता हैं, एक इसराइली और एक अरब वासी। इस युद्ध में दोनों ने अपनी बेटियों को खो दिया है और दोनों दोस्त हैं। वे युद्ध की शत्रुता नहीं देखते, बल्कि वे दोनों व्यक्ति की मित्रता को देखते हैं, जो एक दूसरे से प्यार करते और दोनों ने एक ही क्रूस को पार किया है। आइए हम इन दो लोगों की इस बेहद खूबसूरत गवाही के बारे में सोचें, जिन्होंने पौत्र भूमि में युद्ध से अपनी बेटियों को खो दिया है। प्यारे भाइयों, आपकी गवाही के लिए धन्यवाद। इतना कहने के बाद संत पापा ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की। उन्होंने युवाओं, बीमारों, बुजुर्गों और नवविवाहितों को विशेष रूप से याद किया और अंत में हे हमारे पिता प्रार्थना का पाठ करते हुए सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus.
Amen.
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने बुधवार ये आम दर्शन समारोह के दौरान धैर्य के गुण पर चर्चा की और उन्होंने एक बार फिर चल रहे युद्धों की निंदा की और शांति के लिए अपील की। साथ ही उन्होंने दो व्यक्तियों के बारे में बातें की जिन्हें पवित्र भूमि में युद्ध के कारण अत्यधिक पीड़ा हुई है। बासम आर्मीन, एक फिलिस्तीनी, और रामी एलहान, एक इसराइली, दोनों ने पवित्र भूमि में युद्ध के कारण अपनी 10 और 13 साल की बेटियों को खो दिया है। श्री बासम ने 2007 में अपनी 10 वर्षीय बेटी अबीर को स्कूल छोड़ते समय एक इसराइली सैनिक द्वारा चलाई गई रबर की गोली से मरते हुए देखा और श्री रामी ने 1997 में यरूशलेम में एक फिलिस्तीनी आत्मघाती हमले में अपनी 13 वर्षीय बेटी इस्मादार को खो दिया। वाटिकन प्रेस कार्यालय के अनुसार दो व्यक्तियों की दोस्ती की कहानी तेरेजियानी पुरस्कार के विजेता कोलम मैककेन के उपन्यास एपिरोगोन में बताई गई है और दोनों व्यक्ति द पेरेंट सर्कल एसोसिएशन के माध्यम से न्याय में शांति को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करते हैं। संत पापा ने बुधवारी आम दर्शन समारोह के अंत में कहा, आइए हम इन दोनों लोगों की खूबसूरत गवाही के बारे में सोचें जिन्होंने पवित्र भूमि में युद्ध के कारण अपनी बेटियों को खोया है। उन दोनों को प्रिय भाइयों के रूप में संबोधित करते हुए संत पापा ने उनकी गवाही के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। संत पापा पोल सस्थम सभागार में बुधवार आम दर्शन समारोह से पहले संत पापा फ्रांसिस ने छोटे कक्ष में उन दोनों के साथ मुलाकात की थी और इतालवी भाषी तीर्थ यात्रियों को अपने संबोधन में संत पापा फ्रांसिस ने यूक्रेन और पवित्र भूमि में शांति के लिए अपनी अपील दोहराई। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, आइए हम शांति के लिए प्रार्थना करें। प्रभु शहीद यूक्रेन को शांति प्रदान करें क्योंकि यह भारी बमबारी से पीड़ित है और इसराइल और फिलिस्तीन को पवित्र भूमि में शांति हो। संत पापा फ्रांसिस ने अंत में प्रार्थना की, प्रभु इस ईस्टर पर सभी को अपनी शांति का उपहार प्रदान करें। और पवित्र भूमि के कैथलिकों को संबोधित एक ईस्टर पत्र में संत पापा फ्रांसिस ने अपनी आध्यात्मिक निकटता और पैतृक स्नेह व्यक्त किया और दुनिया भर के ख्रिस्तियों को शांति के लिए ठोस समर्थन देने और प्रार्थना करने हेतु प्रोत्साहित किया। संत पापा फ्रांसिस ने पवित्र भूमि के कैथलिकों को पत्र लिखकर उन्हें आश्वासन दिया कि वे प्रतिदिन उनके विचारों और प्रार्थनाओं में शामिल हैं। वे लिखते हैं, पवित्र भूमि में रहने वाले प्रिय कैथलिक विश्वासियों, मैं आप सभी को गले लगाता हूँ। विशेष तरीके से मैं उन लोगों को गले लगाता हूँ जो युद्ध की संवेदनहीन त्रासदी से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। बच्चों से उनका भविष्य लूट गया है, जो शोक मनाते हैं और दर्द में हैं, और वे सभी जो खुद को पीड़ा और निराशा का शिकार पाते हैं। संत पापा ने उन लोगों के लिए ईस्टर के विशेष महत्व पर गौर किया जो येसु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के पवित्र स्थानों में रहते हैं। ख्रिस्तियों की उन भूमियों में रहने की इच्छा को स्वीकार करते हुए जहां वे सदियों से रहते आ रहे हैं, संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि यह अच्छा है और वहीं रहना भी चाहिए। उनके विश्वास, दान और आशा के लिए संत पापा ने उन्हें धन्यवाद दिया। संत पापा 2014 में पवित्र भूमि की अपनी तीर्थ यात्रा को याद करते हैं और संत पापा पॉल षष्ठम के शब्दों को दोहराते हैं जिन्होंने मध्य पूर्व में शांति और सुरक्षा और मानवीय मूल्यों के लिए निरंतर और गंभीर खतरे की चेतावनी दी थी जिसमें निरंतर तनाव शामिल था। संत पापा फ्रांसिस ने हमारी मुक्ति के स्थानों की रक्षा करने में मध्य पूर्व के ख्रिस्तियों की भूमिका पर प्रकाश डाला, साथ ही प्रभु के दुख भोग के रहस्य के लिए कष्टों के माध्यम से उनके स्थायी साक्ष्य पर भी प्रकाश डाला। उधर वाटिकन ने घोषणा की है कि इस वर्ष संत पापा फ्रांसिस पवित्र शुक्रवार को रोम में प्रतिष्ठित कोलोसेयम में होने वाले क्रूस मार्ग धर्म विधि के लिए खुद चिंतन लिख रहे हैं। संत पापा के चिंतन का विषय है क्रूस मार्ग में येसु के साथ प्रार्थना में। रोम के कोलोसेयम में क्रूस मार्ग की पारंपरिक धर्म विधि शुक्रवार को रोम के स्थानीय समय अनुसार शाम 9:15 बजे शुरू होगी। संत पापा का चिंतन वर्तमान घटनाओं के व्यापक लेकिन अप्रत्यक्ष संदर्भ के साथ उस क्षण पर केंद्रित है जो येसु ने क्रूस मार्ग पर अनुभव किया था और यह पीड़ा को भी विस्तार करता है। उधर वाटिकन के विदेश सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गल्लाघर यूक्रेन और पवित्र भूमि में युद्धों के साथ साथ यूरोप और दुनिया के भविष्य पर चर्चा करते हैं और दो राज्य समाधान के लिए परम धर्म पीठ के समर्थन को दोहराते हैं। महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गल्लाघेर ने मंगलवार शाम को इटली के सरकारी टीवी राई के TG1 समाचार कार्यक्रम को एक साक्षात्कार दिया। जिन विषयों पर चर्चा की गई उनमें मास्को में भयानक हमला, यूरोप और दुनिया में सामान्य अस्थिरता और बातचीत के माध्यम से यूक्रेन में शांति के लिए काम करने और शांति को बढ़ावा देने की कोशिश पर जोर दिया गया। महाधर्माध्यक्ष गल्लाघेर ने विशेष रूप से दो समुदायों, दो राज्यों के समाधान की आशा के साथ पवित्र भूमि पर चर्चा की और गाजा में विनाशकारी स्थिति के लिए अपने दुख पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मास्को में आतंकवादी हमला हमें इस पर विचार करने के लिए मजबूर करना चाहिए क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे समाज में ऐसे तत्व हैं जो केवल विनाश करना चाहते हैं और पीड़ा पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने इस वास्तविक खतरे का संकेत दिया कि मास्को नरसंहार वैश्विक स्थिति को और भड़का सकता है। जो देश इस तरह का आघात झेलता है वह और भी कड़ी प्रतिक्रिया दे सकता है, जैसा कि इजरायल ने 7 अक्टूबर के बाद किया था। उन्होंने कहा, यह सारी अस्थिरता उस आदेश के विघटन का परिणाम है जिसे हमने सोचा था कि हमने दो विश्व युद्धों के बाद स्थापित किया था। शीत युद्ध के बाद जहां राज्यों ने एक दूसरे के साथ बातचीत करके और संवाद करके अपने संघर्षों को हल किया था। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।